ओम शांति।
आज वाणी चल रही थी 30 मई 1966 की।
द वाणी दैट वॉज बींग डिस्कस्ड टूडे इज डेटेड 30 मई 1966।
बात चल रही थी बेहद के बाप और वर्षे को याद करना।
It was being said that the unlimited father and his inheritance should be remembered.
बेहद के बाप को याद करना है और वर्षे को याद करना
है। The unlimited father should be remembered and his inheritance should be remembered.
बेहद का बाप कौन है? शिव बाबा।
Who is the unlimited father? शिव बाबा।
शिव बाबा है बेहद का बाप। बेहद का बाप या बाबा।
Is Shiv Baba the unlimited father? Is he the unlimited father or is he Baba?
Shiv Baba kya hai?
Who is Shiv Baba?
Shiv Baba hai ya Shiv Bap hai?
Is he Shiv Baba or Father Shiv?
Shiv Baba.
Shiv Baba hai? Yahan abhi kya bola?
He is Shiv Baba. What was said here just now?
Ved ke baap aur varsha ko yaad karna hai.
The unlimited father and his inheritance should be remembered.
बेहद के बाबा नहीं बोला।
It wasn't said the unlimited Baba.
क्या बोला?
What was said?
बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है।
The unlimited father and his inheritance should be remembered.
माना बेहद का बाप शिव बाबा नहीं है?
Does it mean that Shiv Baba is not the unlimited father?
बेहद का बाप कौन है?
Who is the unlimited father?
Supreme Soul. वो है बेहद का बाप।
The Supreme Soul, he is the unlimited father.
हद की दुनिया का भी और बेहद की दुनिया का भी।
Of the limited world and the unlimited world.
प्रजापिता तो सिर्फ मनुष्य आत्माओं का बाप है।
Prajapita is the father of only the human souls as human beings.
लेकिन supreme soul तो मनुष्य आत्माओं का बाप तो है ही।
But the supreme soul is of course the father of the human souls.
और जो भी आत्माएं हैं, कीट पशु पक्षी पतंगे, वो भी तो आत्माएं हैं।
In addition, all the other souls, whether they are insects, animals, birds, flies, they too are souls.
उन सब आत्माओं का भी बाप।
He is the father of all these souls as well.
लेकिन बेहद के बाप दो बताए।
However, two unlimited fathers were mentioned.
एक आत्माओं का बाप और दूसरा बेहद जो मनुष्य शक्ति है उनका बाप।
One is the father of the souls and the other one is the father of the unlimited human world.
बेहद मनुष्य सृष्टि में सभी धर्म के मनुष्य आ जाते हैं।
In the unlimited human world, people of all the religions are included.
हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो।
Whether they are Hindus, Muslims, Sikhs or Christians.
जो भी मनुष्य मात्र हैं।
All those who are human beings.
आज 500-700 करोड़ की मनुष्य आत्माएं हैं।
Today there are 500 to 700 crores human souls.
उन सब का बाप माना प्रजापिता।
प्रजापिता is the father of all of them.
सारी मनुष्य शक्ति की जो भी प्रजा है, जिस धर्म की भी प्रजा है, सब का बाप।
He is the father of all the subjects of the entire human world, whichever religion they belong to.
तो वो सबका बाप आदि में होगा, सृष्टि के मध्य में होगा, यांत में होगा।
So, will the father of all the human beings be there at the beginning of the world, in the middle, or at the end?
आदि में होगा, सो अंत में भी होगा।
If he is there in the beginning of the world, he will be at the end too.
आदि सो अंत।
As the beginning, so the end.
सभी धर्म के लोग मानते हैं कि मनुष्य सृष्टि का ओरिजिन शुरुआत वो एक मनुष्य से हुआ.
पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन्स एक्सेप्ट दैट द ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड टुक प्लेस विद वन ह्यूमन बीइंग.
मुसलमान लोग उसको क्या कहते हैं?
आदम.
आदम कहते हैं, अंग्रेज लोग एडम कहते हैं, हिंदू लोग आदिदेव कहते हैं.
What do the Muslims call him? They call him Adam. The Christians call him Adam. And the Hindus call him Adidev.
तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है. शंकर की मूर्ति सामने रख के बोलते हैं ना? तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है.
You are the first deity and the first man. They keep in front of them the idol of Shankar and pronounce this, don't they?
और जैनी लोग भी उसको आदिनाथ कहते हैं.
And the Jains call him Adinath.
तो हर धर्म में उस बाप की जो बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप है उसकी मान्यता है.
Therefore, that father who is the father of unlimited human world is accepted in all the religions.
लेकिन उसकी पहचान कब होती है?
But when is he recognized?
बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप.
The unlimited father of the human world.
जो भी बेहद मनुष्य सृष्टि है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों से लेकर के.
The entire human world that exists in the four ages, right from the golden age to the silver age, the copper age and the iron age.
और अब तक की जो भी सृष्टि है मनुष्य, मनुष्य मात्र की.
And the world of all the human beings that is there until now.
उस सृष्टि में वो बेहद हीरो पार्टधारी है.
He is the unlimited hero actor in that world.
आज से लेकर अंत तक पार्ट बजाता है.
He plays the role right from the beginning up until the end.
लेकिन उसकी पहचान किसी को नहीं होती.
But nobody recognizes him.
तो जब पहचान ही नहीं तो बेहद का बाप भी नहीं.
When nobody recognizes him, he isn't the unlimited father either.
पहचान कब होती है?
When is he recognized?
जब वो सुप्रीम सोल, जो भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, उन बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, जिसकी यादगार भारतवर्ष में शिवलिंग बनाते हैं.
He is recognized when the supreme soul, the father of all the point-like souls, in whose memory the Shivling is made in Bharat, enters him.
निराकार की यादगार है.
It is the memorial of the incorporeal one.
वो कभी साकार नहीं बनता.
He never becomes corporeal.
जन्म-मरण के चक्र में नहीं आता.
He doesn't come in the cycle of life and death.
सुख अथवा सुख दुख कुछ भी नहीं भोगता.
He doesn't experience sorrow or happiness.
अभोगता है. वो आकर्ता है.
He is the one who doesn't experience happiness or sorrow through the organs, that is abhokta. He is beyond the effect of karma, that is akarta.
Na dusht karma karta hai aur na shreshth karma karta hai.
He neither performs wicked actions nor does he perform pious acts.
Karata hai.
He gets it done.
तो जिसके द्वारा कराता है वो हुआ मनुष्य सृष्टि का बाप.
सो द वन थ्रू हुम ही गेट्स इट डन इज द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड.
और स्वयं भी कर्म करके अगर सिखाता है तो हुआ हुआ ब्रह्म.
एंड इफ ही हिमसेल्फ परफॉर्म्स द एक्शंस and teaches through them, then he is Brahma.
तो कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा.
Then he is called Prajapita Brahma.
मनुष्य सृष्टि का बाप है तो माँ भी होगी.
When there is a father of the human world, then obviously there will be a mother too.
लेकिन उनकी प्रत्यक्षता तब होती है जब वो सुप्रीम सोल बाप इसे कलयुगी पापी मनुष्य सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए इस सृष्टि पर आता है.
बट दे विल बी रिवील्ड व्हेन द सुप्रीम सोल फादर कम्स टू दिस वर्ल्ड टू ट्रांसफॉर्म दिस आयरन एज वीशियस ह्यूमन वर्ल्ड.
और जिस सृष्टि के जो माता पिता हैं, मनुष्य सृष्टि के उनमें प्रवेश करता है।
एंड ही एंटर्स द फादर एंड द मदर ऑफ दिस ह्यूमन वर्ल्ड।
कौन है माता पिता?
हु आर द मदर एंड द फादर?
भारत की परंपरा में दो का विशेष गायन है।
इन द इंडियन कल्चर टू सोल्स आर एस्पेशली प्रेस्ड,
एक राम और कृष्ण।
वन इज राम एंड द अदर इज कृष्ण।
कृष्ण को मृदुल रूप दिखाया है, मीठा रूप।
कृष्णा इज शोन एज द फॉर्म विथ जेंटल नेचर, स्वीट नेचर।
और राम को कड़क स्वभाव वाला दिखाया
है। एंड राम इज शोन एज द वन विथ स्ट्रिक्ट नेचर।
इसलिए मुरली में बोला है राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है।
दैट इज वाई इट इज सेड इन द मुरली द फादर इज कॉल्ड राम एंड द चाइल्ड इज कॉल्ड कृष्णा।
तो ये जो बाप और बेटे के रूप में षष्ठी के आदि की दो विशेष आत्माएं हैं।
देयरफॉर दीज टू इन द फॉर्म ऑफ द फादर एंड द सन आर द टू स्पेशल सोल्स ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड।
मनुष्य षष्ठी का पहला पत्ता कृष्ण बच्चा।
द फर्स्ट लीफ ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड इज द चाइल्ड कृष्णा।
इसको कहते हैं शास्त्रों में हे कृष्ण नारायण वासुदेव।
For whom it is sung in the scriptures,
हे कृष्ण नारायण वासुदेव। कहते हैं कृष्ण वासुदेव अर्थात नारायण का राज्य सतयुग के आदि में था।
It is said that Krishna Vasudev, that is Narayan, ruled in the beginning of the golden age.
लेकिन सतयुग आदि में जिस नारायण का राज्य था उसको जन्म किसने दिया?
But who gave birth to the Narayan who ruled in the beginning of the golden age?
तो जो जन्मदाता है, जो पहले बच्चे का, पहले पत्ते का जन्मदाता है,
the one who gives birth to that first child, the first leaf,
वो ही सारी मनुष्य सृष्टि रूपी जो बीज है, मनुष्य सृष्टि का बीज,
is himself the seed of the entire human world.
जिसको गीता में कहा गया हम बीज प्रदपिता।
फॉर होम इट इज संग इन द गीता
हम बीज प्रदपिता। मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज बोने वाला पिता हूँ, मैं बीज हूँ।
आई एम द फादर ऑफ दिस ह्यूमन वर्ल्ड हु सोस द सीड, इट मीन्स आई एम द सीड।
मैं सुप्रीम सोल खुद ही उसमें प्रवेश करके बोलता है।
It means that the Supreme Soul Himself enters him and says,
कि मैं ज्ञान का जब बीज बोता हूँ तब तुम आत्मा को पता चलता है कि तुम शरीर नहीं हो।
When I sow the seed of knowledge, you souls come to know that you are not a body.
ये शरीर तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा।
This body is soil and it will mix with the soil.
लेकिन शरीर में जो आंखों में से ज्योति निकल रही है, ये ज्योति भ्रकुटि के मध्य में।
बट द लाइट विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द आईज, दिस लाइट इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड।
जैसे बैटरी का सेल होता है, ऐसे वो बैटरी के रूप में आत्मा बैठी हुई है।
इज जस्ट लाइक द सेल इन द बैटरी, सिमिलरली द सोल सिट्स देयर इन द फॉर्म ऑफ अ बैटरी।
इसलिए यादगार में बिंदु लगाते हैं, टीका लगाते हैं।
दैट इज वाई इन इट्स रिमेम्बरेंस अ डॉट अ टीका इज अप्लाइड।
कहाँ? ब्रकुटी के बीच में लगाते हैं।
वेयर? इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड।
गाल पर टीका नहीं लगाएंगे, थोड़ी पर नहीं लगाएंगे।
इट इज नॉट अप्लाइड ऑन द चीक्स, इट इज नॉट अप्लाइड ऑन द चीन।
कहाँ लगाते हैं? ब्रकुटी में लगाते।
वेर इज इट अप्लाइड? इट इज अप्लाइड ऑन द सेंटर ऑफ द फोरहेड।
जो टीका है वो आत्मिक स्मृति में टिकने की निशानी है।
द टीका इज अ सिंबल ऑफ बिकमिंग स्टेबल इन द सोल कॉन्शियस स्टेज।
इसीलिए गीता में कहा है भ्रवोर मध्य प्राण आवेश सम्यक।
दैट इज वाई इट इज सेड इन द गीता
भ्रवोर मध्य प्राण आवेश सम्यक। जब मनुष्य शरीर छोड़ने लगे तो मनुष्य आत्मा का काम है वो अपने भ्रकुटि के मध्य में आत्मा का ध्यान करे।
When a human being soul is about to leave his mortal body, it is the duty of a human soul that he should remember the soul in the middle of his forehead.
आत्मा का रूप भी बताया है शास्त्रों में। अणोणीयान समनुस्मरेत्य।
The form of a soul is also mentioned in the scriptures.
अणोणीयान समनुस्मरेत्य। आत्मा अणुरूप है, माने अत्यंत छोटी है, अति सूक्ष्म है।
The soul is like an atom, which means it is very small, very subtle.
जैसे अणु से एटम बम बनता है।
Just as an atom bomb is prepared from atoms.
ऐसे ही ये आत्मा चैतन्य एटम है।
Similarly, the soul is a living atom.
एटम का ही नाम आत्मा है।
The name of the atom is Atma, soul.
वो एटम जिससे एटम बम बनता है कितना पावरफुल होता है।
The atom from which the atom bomb is made is so powerful.
वो जड़ है और ये एटम ये चैतन्य आत्मा है।
It is non-living and this atom is a living Atma.
ये चैतन्य आत्मा भी जब सामूहिक शक्ति अपनी इकट्ठी कर लेती है तो चैतन्य एटम बम का काम करती है।
दिस लिविंग आत्मा प्लेज द रोल ऑफ अ लिविंग एटम बम व्हेन इट गैदर्स द कलेक्टिव एनर्जी।
आत्मा में जबरदस्त शक्ति भरी हुई है।
द सोल इज फिल्ड विथ ग्रेट पावर।
लेकिन आत्मा अपने स्वरूप को भूली हुई है।
बट इट हैज फॉरगॉटन इट्स ओरिजिनल फॉर्म।
देह भान होने के कारण घड़ी घड़ी देह याद आती।
बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस एवरी नाउ एंड अगेन इट रिमेम्बर्स द बॉडी।
देह के पदार्थ याद आते हैं, देह के संबंधी याद आते हैं।
इट रिमेम्बर्स द थिंग्स रिलेटेड टू द बॉडी, द बॉडीली रिलेशंस।
और आत्मा अपना स्वरूप भूल जाती।
एंड दस द सोल फॉरगेट्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म।
तो कॉन्सेंट्रेशन हट जाता है।
सो द कॉन्सेंट्रेशन इज डाइवर्टेड।
जो एकाग्रता है आत्मिक एकाग्रता भंग हो जाती है।
द कॉन्सेंट्रेशन ऑन द सोल इज डाइवर्टेड।
वो आत्मिक एकाग्रता को धारण करने के लिए अभ्यास चाहिए।
इन ऑर्डर टू इनकल्केट द कॉन्सेंट्रेशन ऑन द सोल प्रैक्टिस इज नेसेसरी।
अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। वो तो उन्होंने गीता में लिख दिया है मनुष्य गुरुओं ने। अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते।
द ह्यूमन गुरुज हैव रिटन दिस इन द गीता
कि मन को एकाग्र किया जा सकता है। भगवान ने ऐसा अर्जुन से बोला लेकिन उसका तरीका है अभ्यास करना चाहिए।
That God said to Arjun that the mind can be concentrated but the method is to practice it.
प्रैक्टिस करनी चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु प्रकृति में विराजमान हूँ।
We practice again and again that I am a soul, a point of light situated in the center of the forehead.
तो ऐसी प्रैक्टिस करते करते क्या होगा? ये प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी।
So, what will happen if we practice it repeatedly? This practice will become firm.
भले कितने भी माया के तूफान आवे।
No matter if Maya brings any number of storms,
prakriti vikaral roop dharan kare.
No matter if nature adopts its fierce form,
to bhi jinki practice pakki hui hogi, wo atmik swaroop ko nahi chhodenge.
But still, those who have put up a firm practice will not leave their soul conscious stage.
Aisa abhyas kab ho sakta hai?
When is this kind of practice possible?
ऐसा अभ्यास तभी संभव है जब ये बुद्धि में बैठ जाए.
This kind of practice is possible only when it sits in the intellect.
ये दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है.
That the world stands on a heap of explosives. That is, it is on the verge of explosion.
जैसे कोई मकान हो और उसके नीचे बारूद बिछा दिया जाए ढेर सारा.
For example, if there is a house and underneath it a lot of explosives are laid.
सिर्फ तीली लगाने की देर है.
Just an ignition is enough.
तो ऐसे ही ये बात बुद्धि में बैठी हुई होनी चाहिए.
Similarly, this thing should be thoroughly imprinted in the intellect.
कि अब इस दुनिया के अंदर खौफनाक चीज तैयार हो चुकी है जिसे कहते हैं एटम बम, हाइड्रोजन बम, कीटाणु बम.
That the dreadful thing which is known as atom bomb, hydrogen bomb, germ bomb has already been made in this world.
History में 2500 साल पहले कभी ऐसी खतरनाक चीज नहीं तैयार हुई थी.
Never before in history was such a dreadful thing invented 2500 years ago.
वो सुप्रीम सोल बाप, निराकार ज्योति, जिसकी यादगार शिवलिंग मंदिरों में रखा हुआ है.
The Supreme Soul Father, the incorporeal point of light, in whose memory the Shivling is kept in the temples.
वो जब इस सृष्टि पर आता है कलयुग के अंत में, जिसके कारण उसको कल्पांतकारी कहा जाता है.
When he comes in this world at the end of the Iron Age, for this reason he is called as Kalpantakari, that is the one who ends the cycle.
चार युगों का संघात कल्प कहा जाता है.
The collection of four ages is called a cycle.
और उस कल्प का जब अंत होता है तो वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आ जाता है.
And when the cycle ends, the supreme soul comes on this world.
और आकर के बताता है कि मैं नई सृष्टि रचने के लिए आया हुआ.
He comes and says, I have come to create a new world.
कैसे बताएगा?
How will he speak?
उसके लिए तो कहते हैं बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहे सकल रस भोगी. शास्त्रों में तो मनुष्य गुरुओं ने लिख दिया.
For him, it is said,
बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहे सकल रस भोगी.
He walks without feet, hears without ears, and performs a variety of karmas without hands. He enjoys all the pleasures without having a head. The human gurus wrote this in the scriptures.
अब उन शास्त्र लिखने वालों से कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि वो जो लिखने वाले थे वो तो चले गए.
Well, nobody can ask the ones who wrote the scriptures, because those who wrote are gone.
जो उन शास्त्रों के टीकाकार हैं उनसे पूछा जाता है कि जब वो निराकार है तो कैसे काम करता है.
The ones who made comments on the scriptures are asked, when he is incorporeal, how does he work?
कैसे दिखता है, कैसे बोलता है?
How does he see? How does he speak?
मुसलमान लोग भी कहते हैं, अल्लाह मियां ने फरमाया.
Muslim people also say, Allah said this.
अरे अल्लाह मियां ने फरमाया तो क्या ऊपर से आवाज आई?
If God said this, then did the voice come from above?
फरमाने के लिए तो मुख चाहिए ना.
He needs a mouth to speak, doesn't he?
तो कोई ठीक समाधान नहीं देता.
So nobody gives an accurate answer.
कि वो निराकार बिना हाथों के कैसे काम करता है?
How the incorporeal one works without hands?
बिना पांव के कैसे चलता है?
Walks without feet.
बिना आंख के कैसे देखता है? और बिना कान के कैसे सुनता है?
Sees without eyes and hears without ears.
ऐसे तो उन मनुष्य गुरुओं की गीता में भी आया हुआ है.
Anyway, something was mentioned in the Gita written by those human gurus.
Sirf ek matra ek shabd aaya hai. Pravesh tum.
Only one word was mentioned. Pravesh tum.
Main pravesh karne yogi hu.
I have the capacity to enter.
Lekin utne se koi samajh nahi pata.
But nobody is able to understand with only this much explanation.
Wo supreme soul मनुष्य के शरीर में ऐसे ही प्रवेश कर सकता है जैसे कोई मनुष्य आत्मा कोई में प्रवेश कर जाती है.
The supreme soul enters in a human body just as a human soul enters in some body.
भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं.
Or a ghost or spirit enters.
लेकिन तौर तरीके अलग होते हैं.
But the methods or ways are different.
मनुष्य आत्माओं को अपना सूक्ष्म शरीर होता है.
The human souls have their subtle body.
और सुप्रीम सोल को अपना सूक्ष्म शरीर नहीं होता.
And the supreme soul doesn't have his subtle body.
सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर.
The subtle body and this physical body.
स्थूलता में ज्यादा ताकत होती है या सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है.
सूक्ष्म.
Does the physical have more power or the subtle have more power? Someone said the subtle.
एटम अति सूक्ष्म है जिससे एटम बम बन जाता है.
The atom is very minute. The atom bomb is made from it.
तो सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होने के कारण मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है अकाले मौत में.
As the subtle has more power when a human soul leaves its mortal body due to untimely death.
तो वो सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत भी बन जाता है.
He takes a subtle body and becomes a ghost or an evil spirit.
और वो जिसमें प्रवेश करता है उसमें अकूत शक्ति आ जाती है.
And the one in whom he enters receives abundant power.
वो तो मनुष्य की बात हुई.
Well, that is about a human soul.
लेकिन यहाँ तो सुप्रीम सोल की बात.
But here it is about the supreme soul.
सुप्रीम सोल कर्म बंधन में बंधता नहीं.
The supreme soul doesn't become entangled in the bondage of karma.
जन्म मरण के चक्र में आता नहीं.
He doesn't come in the cycle of life and death.
गर्भ से जन्म लेता नहीं.
He doesn't take birth from the womb.
तो उसको सूक्ष्म शरीर का बंधन भी क्यों बंधेगा.
सो वाई विल ही बी बाउंड इन अ सटल बॉडी.
वो तो हल्की फुल्की आत्मा है.
ही इज अ वेरी लाइट सोल.
ज्योति बिंदु है.
ही इज अ पॉइंट ऑफ लाइट.
जिसे ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाया है. जिसको अपने हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है.
द शिवलिंग विच डजंट हैव इट्स ओन हैंड फीट नोज आईज एंड ईयर्स is made as a big form of the point of light.
ये यादगार समझाने के लिए ऋषियों ने ये स्वरूप बनाया था.
This form of the memorial was prepared by the sages and the great saints in order to explain this.
तो वो सुप्रीम सोल प्रवेश कर सकता है.
So the supreme soul can enter.
अब सवाल पैदा होता है किसमें प्रवेश करेगा.
Now the question arises, in whom will he enter?
Hindu शास्त्रों में तो 24-24 अवतार दिखा दिए.
In the Hindu scriptures, 24 incarnations have been shown.
घोड़े का अवतार दिखा दिया, सुअर का अवतार दिखा दिया, मगरमच्छ का अवतार दिखाई दिया, कछुए का अवतार दिखाई दिया.
They have shown the incarnation in a horse. In a pig, in a crocodile, in a turtle.
फिर मनुष्य अवतार भी दिखाई दिए.
And then they have also shown the incarnation in a human body.
राम और कृष्ण का भी अवतार दिखाया.
They have shown the incarnation of Ram and Krishna too.
आधा मनुष्य और आधा शेर का अवतार दिखाया.
They have shown the incarnation in a being half human and half lion.
नरसिंह अवतार.
The incarnation as Narsingh.
जिन कवियों ने वो कविताएं लिखी है जिन्हें शास्त्र कहा जाता है.
Those poets who wrote the poetry that is known as scriptures,
हजारों साल पहले उन कवियों ने लिखी थी.
They wrote it thousands of years ago.
उन कवियों की भाषा अलंकारिक थी, लाक्षणिक थी.
The language of those poets was ornamental, symbolic.
प्रतीकात्मक भाषा थी.
It was a figurative language.
जिस भाव से उन्होंने लिखा था, उस भाव को पहचानने वाले आज के तामसी मनुष्य नहीं है.
The degraded people of today cannot understand the meaning with which they wrote it.
क्योंकि कलयुग के अंत में आकर के मनुष्य के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच विकार अति में समा जाते.
It is because at the end of the Iron Age, the five vices, lust, anger, greed, attachment and ego are accumulated in their full form within the human beings.
कोई भी बात के अर्थ को उल्टा समझता है.
They, the human beings, take everything in the opposite way.
इसलिए मनुष्य गुरुओं के द्वारा जो लिखे हुए शास्त्र हैं, उनकी उल्टी उल्टी टीका समझ ली.
That is why they misinterpreted the scriptures that were written by the human gurus.
उसका सही अर्थ नहीं समझा गया.
They did not understand the right meaning of it.
तो फिर परमात्मा को ही, सुप्रीम सोल को ही इस सृष्टि पर आना पड़ता है.
Then God, the supreme soul, is compelled to come on this world.
और उन शास्त्रों का सार आकर के समझाता है.
And he explains the essence of those scriptures.
बताता है कि मैं प्रवेश करता हूँ.
He says, I enter.
मैं जब प्रवेश करूँगा तो क्या कीड़े मकोड़ों को सुधारने के लिए प्रवेश करूँगा?
When I enter, will I enter to reform insects and spiders?
जानवरों को सुधारने के लिए प्रवेश करूँगा.
Will I enter to reform animals?
अरे ये कीट पशु पक्षी पतंगे जानवर, इनमें तो मन बुद्धि की प्रधानता ही नहीं है.
अरे दीज इंसेक्ट्स एनिमल्स बर्ड्स एंड फ्लाइज डू नॉट हैव द डोमिनेंस ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट.
इनके द्वारा सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो सकता.
द वर्ल्ड कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू देम.
सृष्टि का परिवर्तन मानसिक पावर से होता है.
The world can be transformed by mental power.
मानसिक पावर, बौद्धिक पावर मनुष्यों में होती है.
The human beings have mental or intellectual power.
मननात् मनुष्य कहा जाता है. जो मनन चिंतन कर सकता है वही मनुष्य है.
It is said,
मननात् मनुष्य,
the one who thinks deeply and churns is called a human being.
और मनन चिंतन भी दो तरह का होता है.
The churning is of two types.
एक शैतान से प्रभावित मन होता है.
One is the mind influenced by the devil.
और एक भगवान से प्रभावित मन होता है.
And the other is the mind influenced by God.
भगवान ज्ञान सुनाकर जिस मन को प्रभावित कर देता है.
The mind that is influenced by God, when he imparts knowledge,
वो मन है इस सृष्टि में अच्छे वाइब्रेशन फैलाता है.
That mind spreads positive vibration in the world.
उन अच्छे वाइब्रेशन से अच्छा वातावरण बनता है.
The positive vibrations create a positive atmosphere.
और अच्छा वातावरण बनने से सृष्टि का कल्याण होता है.
And the world is benefited from the positive atmosphere.
कलयुग बदल करके सत्य को पैदा होता है.
The Iron Age transforms into the Golden Age.
मनुष्य के पास मनसा की पावर है.
The human beings possess mind power.
लेकिन वो उसका उपयोग नहीं जानता.
But they don't know how to use it.
हर मनुष्य आत्मा को जन्म से ही दात मिली हुई है.
Every human being has received a gift from birth.
सबसे बड़ी दात मिली हुई है ईश्वर से मन बुद्धि की.
He he has received the greatest gift of the mind and the intellect from God.
लेकिन मनुष्य गुरुओं ने उस ईश्वरीय दांत को उल्टी पढ़ाई पढ़ा करके दबाई दिया.
But the human gurus have suppressed that gift by teaching wrong things.
तो मनुष्य लोग जो सुनते हैं गुरुओं से उन्हीं बातों पर विश्वास कर लेते हैं.
So the human beings believe in whatever they listen from the gurus.
ईश्वरीय जो देन मन बुद्धि जन्म से मिली हुई है उसका उपयोग नहीं करते.
They do not make use of God's gift, the mind and intellect received by them since their birth.
अभी परमात्मा बाप बताते हैं, हे आत्माओं.
Now the Supreme Soul Father says, O souls,
तुम मन बुद्धि रूपी आत्मा हो.
You are souls in the form of mind and intellect.
जब तुम हो ही मनुष्य जिसमें बुद्धि की प्रधानता होती है.
When you are yourself a human being who have the superiority of the intellect,
तो तुम अपनी मन बुद्धि की प्रधानता के आधार पर जो कर्म करेंगे,
whatever act you perform on the basis of the superiority of the mind and intellect,
उससे सृष्टि का परिवर्तन जरूर होगा.
Will definitely bring about the transformation of the world.
लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए.
But for this, you require practice.
एकाग्रता का. एकाग्रता आएगी वैराग्य से.
Concentration. Concentration will come through asceticism.
ये दुनिया देह के संबंधी देह के पदार्थ.
This world, the physical body, its relations. The things related to the body,
चाहे वो मकान हो चाहे दुकान हो, सब जाने वाले हैं.
Whether it is a house or a shop, all that will perish.
मनुष्यों के सारे आधार खिसकने वाले हैं.
All the supports of the human beings are about to slip off.
तो मन के अंदर वैराग आएगा.
Then asceticism will arise in the mind.
वैराग आने से इसे दून दुनिया से बुद्धि हट करके एकाग्र बनेगी.
Due to developing asceticism, the intellect will be diverted from this world and become concentrated.
और जब बुद्धि की एकाग्रता आएगी,
and when the intellect achieves concentration,
तो मनसा पावर बौद्धिक पावर बढ़ती जाएगी.
The mind power and the intellectual power will increase.
और मनुष्य अपने वाइब्रेशन के आधार पर अपनी बौद्धिक पावर के आधार पर इस सृष्टि को परिवर्तन कर सकेगा.
And then the human being on the basis of his vibration and the intellectual power will be able to transform this world.
संगठित रूप में परिवर्तन करेगा.
He will collectively transform it.
कहते अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता.
It is said, a big task cannot be accomplished by one person.
Supreme Soul Bap, वो भी सृष्टि पर आकर के अकेला कुछ नहीं कर सकता.
Even the Supreme Soul Father cannot do anything in this world alone.
हम आत्मा रूपी बच्चों का आधार लेता है.
He takes the help of us children in the form of a soul.
लेकिन शास्त्रों में लिख दिया है कि वो जानवरों के रूप में आता है.
But it is written in the scriptures that he comes in the form of animals.
तो सर्वव्यापी का ज्ञान फैल गया कि भगवान सर्वव्यापी है.
So the knowledge of omnipresence, that God is omnipresent, was spread.
कीट पशु पक्षी पतंगों सब में है.
He is in the insects, animals, birds and flies. He is in everything.
लेकिन भगवान सर्वव्यापक नहीं है.
But God is not omnipresent.
वो तो इस मनुष्य सृष्टि की जो भी श्रेष्ठते श्रेष्ठ आत्मा है, हीरो पाटधारी आत्मा है, मनुष्य सृष्टि की पिता स्वरूप है, मनुष्य सृष्टि का बीज है पहला, उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है.
He enters the greatest soul of this human world, the soul who is the hero actor, the one who is in the form of the father of this human world, the first seed of the human world in a permanent way,
aur sari srishti ka parivartan karta hai
and transforms the entire world.
To ek vyapi hua ya sarvyapi hua? Wo ek vyapi hokar ke aata hai.
So is he omnipresent or does he come only in one? He comes and is present in one.
Agar wo sarvyapi hota to sari srishti sukhdayi honi chahiye ya dukhdayi honi chahiye?
If he had been omnipresent, should this entire world be happy or unhappy?
Paramatma ko to sukh ka sagar kaha jata hai.
The supreme soul is called the ocean of happiness.
Koi kehta hai Paramatma dukh ka sagar hai?
Does anybody say that the supreme soul is the ocean of unhappiness?
Pyar ka sagar kaha jata hai.
He is called the ocean of love.
To sari srishti mein ye irsha desh jo bhara hua hai.
But jealousy and envy fills this entire world.
Ek dusre ki mara mari karne ke liye atom bomb taiyar kar liye hai. Ye kyon hota?
People have invented atom bombs to kill each other. Why does this happen?
To isse sabit hota hai ki wo ek vyapi ban kar ke aaya.
This proves that he comes in one.
Aata hai और जब एक व्यापी बनकर के आएगा तो परमात्मा के प्रति एकाग्रता बढ़ेगी.
एंड व्हेन ही कम्स इन वन विल इट इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द सुप्रीम सोल?
या वो सर्वव्यापी हो जाएगा तो एकाग्रता बढ़ेगी.
और विल द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज व्हेन ही बिकम्स ओमनी प्रेजेंट?
मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, गुरुद्वारे में भी है, गिरजाघर में भी है.
इफ ही इज इन द टेम्पल, he is in the mosque, he is in the gurudwara, he is in the church.
Is teerth mein bhi hai, us teerth mein bhi hai, to buddhi ekagr hogi?
He is in this religious place as well as that religious place. Will the intellect be stabilized by this?
Ya sirf ek manushya matra mein hi sakti mein pravesh karke wo apna parichay dega ki mera ye ye swaroop hai. ज्ञान के आधार पर.
और विल इट बी स्टेबलाइज्ड व्हेन ही एंटर्स ओनली इन वन ह्यूमन बीइंग ऑन दिस वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ, आई एम ऑफ दिस फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज?
जो ज्ञानी तू आत्मा बच्चे होंगे, मन बुद्धि का प्रयोग करने वाले बच्चे होंगे.
द नॉलेजेबल चिल्ड्रन हु यूज देयर माइंड एंड इंटेलेक्ट.
जानवर बुद्धि नहीं होंगे, पत्थर बुद्धि नहीं होंगे, वो मेरे को पहचान लेंगे.
हु विल नॉट बी हैविंग एन इंटेलेक्ट लाइक द इंटेलेक्ट ऑफ द एनिमल्स, हु विल नॉट हैव अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट विल रिकॉग्नाइज मी.
इसलिए बोला है ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा.
दैट इज व्हाई इट इज सेड गॉड स्पेशली लाइक्स द नॉलेजेबल वंस.
ज्ञानी आत्मा तू मुझे विशेष प्रिय है.
द नॉलेजेबल सोल्स आर स्पेशली डियर टू मी.
ज्ञानी भी होते हैं, इस सृष्टि पर भक्त भी होते हैं और वैरागी भी होते हैं.
देर आर द नॉलेजेबल वंस, देर आर डिवोटीज एंड देर आर एसेटिक्स टू इन दिस वर्ल्ड.
लेकिन जब ज्ञान मिलता है सच्चा,
बट व्हेन दे रिसीव द रियल नॉलेज,
तो सच्चे ज्ञान के आधार पर जो भक्ति के क्रियाकर्म कांड है,
देन ऑन द बेसिस ऑफ द रियल नॉलेज ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ भक्ति,
जो मनुष्य गुरुओं ने रचे हैं, जिनमें अंधश्रद्धा भरी हुई है,
विच द ह्यूमन गुरुज हैव मेड एंड विच इज फुल ऑफ ब्लाइंड फेथ,
वो ज्ञान के फोर्स से उनका खंडन हो जाता है.
आर डेमोलिश्ड विद द फोर्स ऑफ नॉलेज.
भक्ति आती है अनेक मनुष्य गुरुओं से.
भक्ति कम्स फ्रॉम मेनी ह्यूमन गुरुज.
अनेक मनुष्य गुरुओं का जो संघात रूप दिखाया है वो रावण के रूप में चित्रित किया गया.
and the collective form of many human gurus has been depicted in the form of Ravan.
कितने सिर दिखाते हैं?
दस.
दस सिर.
How many heads are shown? 10 heads.
दस सिर का मतलब हुआ एक मत से एक मनुष्य शरीर के द्वारा मत नहीं देता है.
10 heads means he doesn't give one opinion through one human body.
एक मुख से मत नहीं देता है, दस मुखों से बोलता है.
He doesn't give an opinion through one mouth. He speaks through 10 mouths.
कहते ना ये तो दो मुंह है, दो मुंह से बात करता है, दो गला है.
It is said he has two mouths, isn't it? He speaks through two mouths. He has a double standard.
कभी एक बात कहता है, कभी दूसरी बात कहता है.
Sometimes he says something and sometimes he says something else.
तो आज दुनिया में 10 धर्म फैले हुए हैं मोटे मोटे.
So today there are 10 main religions spread throughout the world.
हिंदू धर्म के दो प्राचीन रूप थे, सूर्यवंश और चंद्रवंश.
In the ancient time, the Hindu religion had two factions, the Sun dynasty and the Moon dynasty.
और उसके बाद आज से 2500 साल पहले इब्राहिम इस्लाम धर्म लाए.
And after that, 2500 years ago, Abraham brought the Islam religion.
महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म लाए. उसके बाद क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म लाए.
महात्मा बुद्ध brought the Buddhist religion. After that, Christ brought the Christian religion.
और उसके बाद मोहम्मद के द्वारा मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई.
And after that, the Muslim religion was established by Muhammad.
शंकराचार्य के द्वारा संन्यास धर्म आया, गुरु नानक के द्वारा सिख धर्म आया.
The sannyas religion came through Shankaracharya. The Sikh religion came through Guru Nanak.
और आर्य समाज आया महर्षि दयानंद के द्वारा.
And the आर्य समाज came through महर्षि दयानंद.
आज से 100-150 वर्ष के अंदर.
Within the last 100 to 150 years.
जो देवताओं को नहीं मानते, माना आधे नास्तिक हैं.
They do not have faith in the deities. They are half atheists.
देवताओं को नहीं मानते, माना स्वर्ग को नहीं मानते.
They do not believe in the deities. It means that they do not believe in paradise.
स्वर्ग नरक कोई अलग-अलग होते हैं, इस बात को नहीं मानते.
They do not accept that heaven and hell are different.
परमात्मा के साकार स्वरूप को नहीं मानते.
They don't believe in the corporeal form of God.
माने आधे नास्तिक है.
That means they are half atheists.
और उनके आने के बाद तुरंत ही सृष्टि पर नास्तिक धर्म फैल जाता है.
And as soon as they arrived, the atheist religion spreads on this world.
नास्तिक माने किसी के ऊपर आस्था नहीं.
Atheist means no faith on anything or anybody.
न आत्मा को न परमात्मा को.
They don't believe in the soul or the supreme soul.
न दुख को न सुख को न स्वर्ग को न नरक को, किसी को नहीं मानते.
In sorrow and happiness, in heaven and hell, they do not believe in any of these.
ऐसा नास्तिक धर्म जब संसार में फैल जाता है.
So when such atheism spreads in the world,
तो दुनिया के हर देश में प्रजातंत्र स्थापन होता है.
Democracy is established in every country in the world.
राजतंत्र खत्म हो जाता है.
Monarchy is finished.
दुनिया की हिस्ट्री बताती है कि दुनिया में सदा राजाओं का राज्य चला है.
The world history tells us that there was always a monarchy system, that is, kings have always ruled the world.
एक राजा होता था और सारी प्रजा पलती थी एक मत से.
There used to be one monarch and all his subjects received sustenance through one opinion system.
राजा माने कंट्रोलर, शासक.
King means controller, ruler.
यथा राजा तथा प्रजा.
As the king, so the subjects.
आज हर देश में मंत्रियों के रूप में ढेर सारे शासक बैठे हुए हैं।
इन द प्रेजेंट टाइम देर आर सो मेनी रूलर्स इन द फॉर्म ऑफ मिनिस्टर्स इन एवरी कंट्री।
मंत्री माना ही मंत्रणा देने वाले, सलाह देने वाले।
मिनिस्टर मीन्स द वन हु गिव्स एडवाइस और ओपिनियन।
अपनी अपनी मत देने वाले।
द मिनिस्टर्स आर द वंस हु गिव देयर ओन ओपिनियन।
तो अनेक मतों का रावण राज्य हुआ या एक सिर वाले राम का राज्य हुआ?
सो इज इट द किंगडम ऑफ रावण विद अ लॉट ऑफ ओपिनियंस और द किंगडम ऑफ वन हेडेड राम?
रावण राज्य हर देश में फैला हुआ है।
रावण्स किंगडम इज स्प्रेड इन एवरी कंट्री।
अभी बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर का राजा बनाने के लिए आया हुआ हूँ।
नाउ द फादर सेज आई हैव कम टू मेक यू चिल्ड्रन किंग्स फॉर मेनी बर्थ्स बाय टीचिंग यू राजयोग।
ये मनुष्य तो डॉक्टरों के कॉलेज खोलते रहते हैं।
दीज ह्यूमन बींग्स कीप ऑन ओपनिंग मेडिकल कॉलेजेस।
उनमें डॉक्टर बनाए जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते रहते हैं, उनमें इंजीनियर बनाए जाते हैं।
डॉक्टर्स आर मेड इन देम, दे कीप ओपनिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस वेयर इंजीनियर्स आर मेड।
वकीलों के कॉलेज खोलते हैं, उसमें जज और वकील बनाए जाते हैं।
दे ओपन कॉलेजेस ऑफ लॉ वेयर एडवोकेट्स एंड जजेस आर मेड।
लेकिन मैं राजयोग की यूनिवर्सिटी खोलता हूँ।
बट आई ओपन द यूनिवर्सिटी ऑफ राजयोग।
उस राजयोग में सब प्रकार की पावर भरी हुई है।
दैट राजयोग इज फिल्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ पावर्स।
इतनी पावर भरी हुई है कि तुम आत्मा जन्म जन्मांतर के राजा बन सकते हो।
सो मच पावर इज फिल्ड इन इट दैट यू सोल्स कैन बिकम किंग्स फॉर मेनी बर्थ्स।
ये राजाई की पढ़ाई आज तक किसी ने नहीं पढ़ाई।
नो वन टॉट दिस टीचिंग ऑफ किंगशिप अप अंटिल नाउ।
हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े राजाए हुए, छोटे छोटे राजाए हुए।
देर वर सो मेनी ग्रेट किंग्स इन हिस्ट्री, देर वर स्मॉल किंग्स।
देश विदेश को कंट्रोल करने वाले हुए, ऐसे ऐसे राजाए हुए जिनके राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था।
देर वर किंग्स हु कंट्रोल्ड देयर ओन कंट्री एंड अब्रॉड, देर वर किंग्स इन हुज किंगडम द सन नेवर सेट।
लेकिन वो सब राजाए बाहुबल के आधार पर बनते थे।
बट ऑल दोज किंग्स बिकेम किंग्स बाय फिजिकल फोर्स।
लेकिन मैं तुम्हें ऐसा राजा बनाने के लिए आता हूँ।
बट आई हैव कम टू मेक यू सच ए किंग।
जिसका गीता में वर्णन है, जो एक ही शास्त्र है जिसके लिए गायन है कि भगवान ने गीता गाई।
दिस इज डिस्क्राइब्ड इन द गीता विच इज द ओनली स्क्रिप्चर फॉर विच इट इज प्रेस्ड दैट गॉड संग द गीता।
और कोई शास्त्र नहीं है जिसके लिए कहा जाए भगवान ने गाया।
देर इज नो अदर स्क्रिप्चर फॉर विच इट इज सेड That it was sung by God.
तो गीता ज्ञान देने वाला वो भगवान अभी बता रहा है कि मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूँ।
So the giver of गीता knowledge, God is saying now, I have come to teach you राजयोग।
राजयोग से तुम राजा बनते हो।
You become king through राजयोग।
ये राजाई सीखने की, राजाई की पढ़ाई पढ़ने की यूनिवर्सिटी है।
This is a university for learning and studying kingship.
नौकर चाकर बनने की यूनिवर्सिटी नहीं है।
It is not a university for becoming servant.
मैं तुम्हें अधीन बनाने के लिए नहीं आया हूँ।
I have not come here to make you subordinates.
मनुष्य गुरुओं ने तुमको अधीन बनना सिखाया।
Human gurus taught you to become subordinates.
मैं तुमको स्वाधीन राजा बनना सिखाता हूँ।
I teach you to become a sovereign king.
तो ऐसी पढ़ाई तुम नहीं पढ़ेंगे क्या?
So won't you learn such knowledge?
इस राजयोग का शास्त्रों में कितना गायन है?
This राजयोग is praised so much in the scriptures.
आज भी विदेश से लोग भारत में आते हैं राजयोग सीखने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता।
इवन टुडे पीपल फ्रॉम अब्रॉड कम टू भारत टू लर्न राजयोग बट दे डोंट गेट एनीथिंग,
क्योंकि राजयोग के नाम पर मनुष्य गुरुओं ने ढेर के ढेर योग सिखाने शुरू कर दिए जाति जाति के।
Because in the name of Rajyog, the human gurus have started teaching them so many types of yogas.
कोई शारीरिक योग सिखाते हैं।
Some teach physical yoga.
आसन प्राणायाम सिखाते हैं।
Some teach asanas, that is rigid physical postures, and pranayam, that is breathing exercises.
कहते हैं ये राजयोग है।
And say that this is Rajyog.
अभी भगवान बाप कहते हैं मैं ऐसी कलाबाजी सिखाने के लिए नहीं आया हूँ।
Now God the Father says, I have not come to teach you this kind of gimmicks.
मैं तो मनुष्यों को मन बुद्धि की प्रैक्टिस कराने के लिए आता हूँ।
I have come to teach human beings the practice of the mind and intellect.
मन बुद्धि की ऐसी प्रैक्टिस,
such a practice of the mind and intellect,
जिससे तुम जन्म जन्मांतर के पावरफुल बुद्धि वाले राजा बनते हो,
with which you become an intellectually powerful king birth after birth,
जिसका मन कंट्रोल में है वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है।
The one who controls his mind can control everything.
मनुष्य में मन बुद्धि प्रधान है।
In the human beings, there is a dominance of the mind and intellect.
तो जो चीज प्रधान है उसका उपयोग करना चाहिए।
So the thing which is dominant should be used.
भगवान बाप आकर के बताते हैं। अभी मन बुद्धि रूपी तुम्हारी आत्मा रूपी बीज बहुत कमजोर हो गया है।
God the Father comes and tells you that now your seed-like soul in the form of the mind and intellect has become very weak.
जैसे कोई बीज होता है धरणी में बोया जाता है।
For example, a seed which is sown in the earth.
तो जितनी बार बोया जाएगा उसकी ताकत कम होती जाती है।
Its power goes on decreasing depending on the number of times it is sown in the earth.
फिर उसकी वैरायटी बदलनी पड़ती।
Then its variety has to be changed.
ऐसे ही ये तुम्हारी आत्मा रूपी जो बीज है।
Similarly, your seed-like soul.
इस मनुष्य सृष्टि में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चार युगों से जन्म लेते लेते अब ये बहुत कमजोर हो चुका है।
While taking birth in this human world, in the four ages, the golden age, the silver age, the copper age, and the iron age, has now become very weak.
मन बुद्धि रूपी आत्मा मन बुद्धि से छीन हो चुकी है।
The soul in the form of the mind and intellect has degraded with the mind and the intellect.
और इसका जो वृक्ष है शरीर है, जिसमें पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेंद्रियां हैं।
एंड द बॉडी विच इज लाइक अ ट्री विच हैज फाइव सेंस ऑर्गन्स एंड फाइव ऑर्गन्स ऑफ एक्शन हैज ऑल्सो बिकम वेरी वीक।
वो भी बहुत कमजोर हो चुकी है। इसका प्रूफ है आज से 500 साल पहले।
द प्रूफ ऑफ दिस इज दैट 500 ईयर्स अगो
महाराणा प्रताप के हाथ में जो तलवार थी,
द स्वॉर्ड विच वॉज इन द हैंड ऑफ महाराणा प्रताप,
वो इतनी बदनी तलवार थी कि हम लोग उसे हाथ में लेने से कतराएंगे, उठाने से कतराएंगे।
वॉज सो हैवी दैट वी वोंट डेयर टेकिंग इट इन आवर हैंड्स और लिफ्टिंग इट।
और उसी तलवार से उन्होंने हिंदुस्तान के सम्राट मुसलमान से लड़ाई लड़ी थी।
बट विद द सेम सॉर्ड ही फॉट द बैटल विद द मुस्लिम एम्परर ऑफ हिंदुस्तान।
कितना 400 साल पहले पावरफुल शरीर होते थे।
हाउ पावरफुल द फिजिकल बॉडी वॉज 400 ईयर्स अगो।
अभी सूखे गालों वाले चुपट्टिया शरीर होते हैं।
नाउ द बॉडीज हैव वीकेंड एंड पोजेस ड्राई चीक्स।
आंखें अंदर धसी हुई होती है, चेहरा निस्तेज होता है।
द आईज हैव गॉन इनसाइड, देयर इज नो ग्लो ऑन द फेस।
ऐसा क्यों हो गया?
व्हाई डिड दिस हैपन?
क्योंकि आत्मा रूपी बीज जन्म जन्मांतर से कमजोर होता आया।
बिकॉज द सीड लाइक सोल हैज बिकम वीक बर्थ आफ्टर बर्थ।
बार बार जन्म लिया, बार बार सुख दुख भोगा, तो आत्मा कमजोर हो गई।
इट टुक बर्थ रिपीटेडली, इट एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस एंड सोरो रिपीटेडली, सो इट हैज बिकम वीक।
अब इस आत्मा रूपी बीज को, बैटरी को पावरफुल बनाने के लिए, चार्ज करने के लिए वो सुप्रीम सोल जनरेटर के रूप में आता है।
Now in order to make this seed like soul powerful, in order to charge the battery, the supreme soul comes in the form of a generator.
वो कहता है बच्चे मेरे से कनेक्शन जोड़ो।
He says, children, tie up a connection with me.
जैसे तुमने जन्म जन्मांतर कनेक्शन जोड़े हैं, कनेक्शन माना संबंध।
Just as you have made connections birth after birth, connection means a relationship.
देहधारियों के साथ संबंध जोड़े हैं ना, चिपक चिपक किया है ना।
You have connected yourself with human beings, haven't you? You have become attached, haven't you?
तो अनेकों के साथ संबंध जोड़ते जोड़ते तुम कमजोर बन गए।
You have become weak by making relationships with many.
ये सब बैटरीज, जितनी भी मनुष्य आत्मा रूपी बैटरीज हैं, वो आत्माएं हैं।
All these batteries, all the soul-like batteries are souls.
डिस्चार्ज होने वाली बैटरीज हैं।
They are the batteries which become discharged.
मैं जनरेटर हूँ।
I am the generator.
मैं आत्मिक शक्ति को जनरेट करता हूँ।
I generate soul power.
मैं सदाशिव हूँ।
I am सदाशिव, that is ever benevolent.
सदा काल के लिए तुम्हारे लिए कल्याणकारी हूँ।
I am your benefactor forever.
जो भी वाचा बोलूँगा वो वाचा तुम्हारे लिए कल्याणकारी।
Whatever I speak is beneficial for you.
कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म करूँगा, किसी मनुष्य शरीर में मुकर्रर में प्रवेश करके,
Whatever action I do through the organs by entering into a human body, the permanent chariot,
वो हर कर्म तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा।
Every action is beneficial to you.
मैं जो भी वाइब्रेशन फैलाऊंगा, वो मनसा का हर वाइब्रेशन तुम्हारे लिए कल्याणकारी है।
Whatever vibration I will spread, every vibration of the mind is beneficial to you.
जिस मनुष्य शरीर में मुकर्रर रथ में प्रवेश करके,
The human body, the permanent chariot through which I enter,
मैं आँखों से दृष्टि दूंगा,
And through whom I give you दृष्टि, through the eyes,
वो दृष्टि जिससे सृष्टि सुधरती है,
That दृष्टि through which the world is reformed,
तुम्हारे जन्म जन्मांतर सुधरते हैं,
Your many births are reformed through it.
वो हर हालत में तुमको पावरफुल बनाएगी।
It will make you powerful in every situation.
वो दृष्टि अगर क्रोध की भी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ गई, तो भी तुम्हारा कल्याण होगा।
Even if you receive the drishti of anger, it is beneficial to you.
क्यों? क्योंकि मेरा नाम सदाशिव है।
Why? Because my name is सदाशिव।
सदाशिव अर्थात हर हालत में कल्याणकारी।
सदाशिव means beneficial in all respects.
जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चा कोई उल्टा कार्य करता है, शीशे को तोड़ता है, तो माँ बाप लाल लाल आंखें निकालते हैं।
For example, parents give an angry look at that child when he does some wrong deed, when he breaks a mirror.
Hey, kya karta hai? Bachcha dar jata hai.
They say, hey, what are you doing? The child is scared.
Wo samajhta hai, mummy papa naraaz ho rahe hain.
He thinks his mother and father are angry with him.
To kya naraaz hote hain? Nahi.
Are they really angry? No.
Andar mein bhav dusra hai.
Inside them, the feeling is different.
Isliye bola hai bhav pradhan vishu rachi rakha. जो भी कर्म किया जाता है जिस भाव से किया जाता है उसके आधार पर उसका पाप पुण्य बनता है.
Therefore it is said,
भाव प्रधान विश्व रचि राखा
means whatever action is done accumulates sins or merits based on the intention with which it is performed.
और मैं तो जिस शरीर में प्रवेश करता हूँ
and the body which I enter,
जिस शरीर के द्वारा कार्य करता हूँ बोलता हूँ,
थ्रू विच आई परफॉर्म एक्शंस, थ्रू विच आई स्पीक,
दृष्टि देता हूँ, वाइब्रेशन फेंकता हूँ,
थ्रू विच आई गिव दृष्टि, स्प्रेड आउट द वाइब्रेशंस,
उस शरीर के द्वारा कार्य होने के कारण उस शरीर का पाप पुण्य बन सकता है.
एज द एक्शंस आर परफॉर्म्ड थ्रू द बॉडी, the body can accumulate sins or merits.
मैं तो अभोक्ता हूँ.
But I am अभोक्ता.
मेरा तो कोई पाप पुण्य बनने का सवाल ही नहीं.
There is no question of accumulating sins or merits on me.
इसलिए मैं तो हर हालत में तुम्हारे लिए कल्याणकारी हूँ.
That is why I am beneficial to you in every situation.
अब मेरे स्वरूप को पहचानो.
Now recognize my form.
मैं जो हूँ, जैसा हूँ और जिस रूप में भी पार्ट बजाए रहा हूँ.
Whoever I am, how I am and in whatever form I am playing my part.
उस रूप को मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी नहीं पहचान पाते.
The children who live with me are not able to recognize that form of mine either.
भी साथ रहने वाले भी
either the ones who live with me either
भी का मतलब ये नहीं है कि सारे ही नहीं पहचान पाते.
Either doesn't mean that everyone is not able to recognize.
कोई कोई है ऐसे जो साथ में रहते हैं तो भी नहीं पहचान पाते.
There are some like that who stay with me but still are not able to recognize me.
माना गुयात गुह्यतरम ज्ञानम, मैं जो ज्ञान देता हूँ गुह्यते गुह्य ज्ञान देता हूँ. गुयात गुह्यतरम ज्ञानम
दैट मीन्स द नॉलेज इज वेरी डीप नॉलेज. द नॉलेज विच आई गिव इज वेरी डीप सीक्रेटिव नॉलेज.
ज्ञान माने जानकारी.
नॉलेज मीन्स इंफॉर्मेशन.
जानकारी भगवान जिस चीज की जानकारी देगा वो सत्य की जानकारी देगा.
The information that God gives about anything will be the truth.
सत्य को परखने के लिए झूठ की भी जानकारी देगा.
And to understand and judge truth, He will give the knowledge of falsehood too.
श्रेष्ठ की भी जानकारी देगा.
He will give the knowledge of the best.
श्रेष्ठ को परखने के लिए दुष्टता की भी जानकारी देगा.
And to judge the best, He will give the knowledge of the worst too.
रावण की भी जानकारी देता है और राम की भी जानकारी देता है.
He gives the knowledge of Ravan and he also gives the knowledge of Ram.
जिस राम में वो सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करके राम भगवान के रूप में गाया जाता है.
राम इन होम द सुप्रीम सोल फादर एंटर्स and is praised as God Ram.
वो राम भगवान कोई त्रेता युग का नहीं था.
That God Ram did not belong to the silver age.
त्रेता युग में तो 14 कलाएं गाई हुई हैं सृष्टि की.
For the silver age, it is sung that there were 14 celestial degrees in the world.
जहाँ 14 कलाएं हैं, सिर्फ 16 कलाएं में से 2 कलाएं कम हुई हैं.
where there are 14 celestial degrees, there has been only 2 celestial degrees less out of 16 celestial degrees.
वहाँ कोई रावण जैसे असुर नहीं होते हैं।
Devils like Ravan do not exist there.
ये तो इस समय की बात है।
This pertains to this time.
कलयुग के अंत में जब मैं आता हूँ।
When I come at the end of Iron Age.
इस सृष्टि के चारों युगों की शूटिंग कराता हूँ। रिहर्सल कराता हूँ।
I get the shooting of all the 4 ages of this world done. I get the rehearsal done.
अभी चारों युगों की रिकॉर्डिंग हो रही है।
At present, the recording of all the 4 ages is going on.
इस ज्ञान को जब तुम बच्चे धारण करते हो,
When you children imbibe this knowledge,
तो अपने चारों युगों के 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग कर रही हो।
You are recording the 84 births you take in the 4 ages.
ज्ञान लेकर के, जानकारी लेकर के, जब तुम श्रीमत पर चलते हो,
When you take knowledge, information and when you follow श्रीमत,
तो सुख की शूटिंग करते हो।
You perform the shooting of happiness.
और जब तुम परमत पर चलते हो, रावण के 10 सिरों की मत पर चलते हो,
And when you follow someone else's direction or the direction of the 10 heads of Ravan,
या कोई भी मनुष्य गुरु की मत पर चलते हो, तो तुम जन्म जन्मांतर के दुख की शूटिंग करते हो।
Or when you follow the directions of any human guru, you are shooting for the misery of your many births.
अपने लिए भी करते हो, और अपने संगी साथी जो जन्म जन्मांतर के हैं, उनके लिए भी करते हो।
You do the shooting for yourself and for your companions and friends of many births.
कहते हैं कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा।
It is said, God incarnates in every age.
हर चार युगों के बाद कलयुग को पलट करके सतयुग बनाने के लिए मैं कल्पांतकारी बाप आता हूँ।
I, the Kalpantakari father, come after every 4 ages to change the iron age into the golden age.
और पापी कलयुग को बदल करके सतयुगी सृष्टि बना कर जाता हूँ।
And I depart after transforming the sinful iron age into the golden age world.
ये सतयुगी सृष्टि सत्य बाप के सिवाय कोई बना ही नहीं सकता।
None other than the truthful father can make the golden age world.
अंग्रेज लोग भी कहते हैं God is truth.
The English people say God is truth.
हिंदी लोग भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम।
The Hindus also say सत्यम शिवम सुंदरम, truthful, benevolent and beautiful.
वो एक ही सत्य है और बाकी दुनिया में सब झूठ है।
He is the only truth. The rest of the world is false.
इसलिए बाप कहते हैं अभी एक की मत पर चलो।
Therefore, the father says, follow the direction of one now.
वेद के बाप और वर्षे को याद करो।
Remember the unlimited father and the inheritance.
वेद का बाप कौन हुआ?
Who is the unlimited father?
शिव बाप, बाबा नहीं। शिव बाप हुआ वेद का बाप।
The father Shiv, not Shiv Baba. The father Shiv is the unlimited father.
कीट पशु पक्षी पतंगे मनुष्यों सब का बाप, देवताओं का भी बाप।
He is the father of all insects, animals, birds, flies and the human beings. The father of the deities too.
और वर्षा? वर्षा क्या हुआ?
फलकम।
And what about the inheritance?
वर्षा हुआ? तुम्हें वर्षा प्राप्त करना है?
What is the inheritance? The inheritance is, do you want to take the inheritance?
तुम्हारा वर्षा है सुख का वर्षा।
Your inheritance is the inheritance of happiness.
तो इस सृष्टि पर सबसे जास्ती सुखी कौन होता है?
Then who is the happiest in this world?
है?
योगी
है, जो जास्ती योगी होगा उतना ही सुख का भोगी होगा।
Someone will enjoy happiness to the extent he is a yogi.
Abhi, जन्म जन्मांतर का सुख भोगने की पावर आत्मा में हम भर रहे.
At present, we are feeling the power of enjoying happiness in our soul for many births.
दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं.
There are so many children born in the world.
उनको अरब पति बाप की अरब संपत्ति मिली हुई है.
They are blessed with multi-millions by their multi-millionaire father.
Multi-millionaire बाप के बच्चे हैं, लेकिन शरीर लुंजपुंज है.
Though they are children of a multi-millionaire father, they are physically handicapped.
मानसिक पावर पागलों जैसी है.
Their mental power is just like a lunatic person.
तो वो सुख भोग सकेंगे? नहीं भोग सकते.
So will they be able to enjoy happiness? They cannot.
क्योंकि शक्ति नहीं है.
Because they don't have the power.
अभी बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान बाप आया हुआ हूँ.
Now the father says, I, your almighty father, have come.
अभी तुम बच्चे मेरे से ही योग लगाकर.
Now you children make a connection with me.
योग माना संबंध है.
योग means a relationship.
मेरे से सब प्रकार के संबंध जोड़ करके जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन सकते हो.
You can tie up all kinds of relations with me and can become happy for many births.
अब नहीं तो कब नहीं?
If not now, so never.
क्योंकि मैं एक ही जन्म में आता हूँ.
Because I come only in one birth.
हर जन्म में नहीं आता, हर युग में नहीं आता.
I do not come in all the births. I do not come in all the ages.
ऐसे नहीं कि सतयुग में आऊंगा, वहाँ तो है ही सत्य का युग.
It is not that I will come in the golden age. There it is anyway the truthful age.
वहाँ के क्या करूँगा? सोलह कला संपूर्ण सुखी सत्य है.
What will I do by coming there? It is a happy world, complete with 16 celestial degrees.
ऐसे नहीं त्रेता युग में रामराज्य में आता हूँ, वहाँ तो है ही रामराज्य.
And it is not so either that I will come in the silver age, which is the kingdom of Ram. There it is anyway the kingdom of Ram.
Ravan Rajya hone ka kya sawal? Jhooti jhooti baatein likh di hai shastron
mein. There is no question of it being the kingdom of Ravan. They have written all false things in the scriptures.
Aise nahi dwapar ke ant mein main Krishna ban kar ke aata hu.
It is not so that I come in the form of Krishna at the end of the copper age.
और पापी कलयुग की स्थापना करके चला जाता हूँ, फिर मेरे आने का फायदा ही क्या हुआ?
And establish the sinful iron age and go back. Then what is the use of me coming?
अरे मैं तो आता हूँ कलयुग के अंत में, जब सारी सृष्टि पर पाप का बोझ बढ़ जाता है.
अरे I come at the end of the iron age when the entire world is loaded with the burden of sins.
सब दुखी हो जाते हैं.
When everybody is unhappy,
तब मैं इसे अति दुखी सृष्टि को अति सुखी बनाने के लिए आता हूँ.
Then I come to transform the extremely unhappy world into an extremely happy world.
कोई कहे ये सब धंधा करने की जरूरत क्या है?
Someone may say, what is the need of doing all this business?
धंधे की बात नहीं है, ये ड्रामा है.
It is not a question of business. This is the drama.
ये सृष्टि एक रंगमंच है.
This world is just like a stage.
इसमें नितांत दुख भी होता है और नितांत सुख भी होता है.
There is complete misery as well as complete happiness in it.
अगर दुख का आगार नहीं होगा तो सुख का कोई मूल्य नहीं होगा.
If there is no abundance of misery, then there will be no value for happiness.
अंधेरा नहीं होगा तो सोधरे को कोई पूछेगा नहीं.
If there is no darkness, nobody will value light.
तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तुम बच्चे विराजमान हो नाटककार के रूप में.
So you children are positioned on the stage like world in the form of actors.
पात्र हो, साक्षी हो करके, ईश्वरीय ज्ञान लेकर के इस सृष्टि रूपी रंगमंच के नाटक को देखो.
You are the actors. So become a witness, take the godly knowledge and watch the drama on this stage like world.
और श्रेष्ठ पाठ बजा करके जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध अभी इसे एक जन्म में बाप से प्राप्त कर लो.
By playing the best role in this one birth, make the attainment for many births from the father.
ओम शांति.